मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सोनू कुमार, आप पटना बिहार से हैं, संतोष कुमार, आप भी पटना बिहार से हैं, अमित कुमार, आपका गांव है तलवाड़ा, जिला होशियारपुर पंजाब से हैं, भीमेश कुमार, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं, और अशोक कुमार सांगवा, आप बीकानेर राजस्थान से हैं। दोस्तों, हम लोग सूचना के अधिकार कानून में जो भी संशोधन की बात की जा रही है लगभग अब पारित होने को ही है, इस पर कल बातें कर रहे थे और मैं बात सूचना के अधिकार में क्या संशोधन किए जा रहे हैं इस पर नहीं कर रहा था, बल्कि इस टॉपिक पर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर हम लोग बात कर रहे थे। मुख्य विषय के तहत मैं इसी पर आज बात करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। एक खबर जो आज अखबारों में भी प्रोमिनेंटली है, चैनल्स पर भी है, न्यूज में भी है, और वो है कि कर्नाटक सरकार विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही और इस तरीके से जो कुमार स्वामी जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे उन्हें पद से हटना पड़ा और उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया गवर्नर को और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा और वो ये कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो देखिए एक कहानी बन रही है, यानी कि कर्नाटक में अभी जो स्थितियां हुई उसे आप एक पॉलिटिकल स्टोरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एक कहानी है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पीकर का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, कोर्ट का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, जो अपोजिशन के लीडर हैं उनका क्या रोल है, ये सब के सब इस कहानी के पात्र हैं। तो आप इस कहानी को पात्रों के माध्यम से देखने और समझने की कोशिश कीजिए और इस पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोप दीजिए, या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आप इस कहानी को चस्पा कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ढेर सारी बातें, ढेर सारे तथ्य आपके दिमाग में एकदम से स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो सीधी सी बात है गवर्नर को देगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें आप बिना पढ़े ही एक तरीके से पढ़ चुके होंगे। कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि जब कोई भी टॉपिक आप तैयार करें तो उस पर आपको विचार करने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए उस पर आप सोचें, क्योंकि सिविल सर्विस मेंस के पेपर को बिना आप सोचे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और यहां तक कि प्री में भी। प्री के बारे में मैं कभी आप लोगों से अलग से बात करूंगा। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए कि जब कर्नाटक में सरकार गिर गई तो जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने एक वक्तव्य दिया, ठीक है, ये वक्तव्य उन्होंने ये दिया कि ये लोकतंत्र की जीत है, ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अब इस पर विचार करना चाहिए कि जैसे अपोजिशन के लीडर ने कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है, तो क्या वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? अगर जीत है तो किस तरह से है, और अगर नहीं है तो किस तरीके से नहीं है? तो आप जब इस पर विचार करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट होगा और दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी, और यह सोचने की आदत ही आपको मेंस में नंबर दिला पाएंगे, राइट? अब मैं दूसरी खबर पे आता हूं और वह है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं अब नए बने हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। इनका नाम याद रखना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बोरिस जॉनसन, जॉनसन पाउडर, बेबी पाउडर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो बोरिस जॉनसन। इस न्यूज को पढ़ते समय आपके दिमाग में हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन आया हो, क्योंकि न्यूज में दिया हुआ है कि बोरिस जॉनसन को इतने मत मिले और उनके जो दूसरे खड़े थे उन्हीं की अपनी पार्टी के जो दूसरे मेंबर थे उनको इतने वोट मिले। हम यह पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामेंट्री जो हमने संसदीय व्यवस्था अपना रखी है वो काफी कुछ ब्रिटेन के अनुकूल है, तो हमारे यहां तो कभी प्रधानमंत्री का निर्वाचन इस तरीके से नहीं होता, हमारे यहां तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बहुमत दल के नेता को जो राष्ट्रपति है वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेंगे और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राइट? राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री को और गवर्नर आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री को, बात खत्म हो गई। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का वहां बहुमत है। देखिए वहां जो लोअर हाउस है, जो हमारे यहां लोकसभा है, उसी के पैरेलल वहां हाउस ऑफ कॉमन्स है, 650 सीटें हैं। वहां भी बिल्कुल यही पैटर्न है कि जिस पार्टी को अधिक वो मत मिलेंगे, यानी कि जिनके अधिक मेंबर होंगे, आधे से अधिक, वहां भी बहुमत का ही मामला है, वह सरकार बनाएगी। अब सवाल यह है कि जो सरकार तो बन गई, मान लीजिए कंजर्वेटिव पार्टी की बन गई, अब कंजर्वेटिव पार्टी को अपना लीडर चुनना है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाए, ठीक है। तो हमारे यहां सामान्यतः क्या होता है, जैसे आप 2014 के या 2019 के इलेक्शन देखें, तो इलेक्शन से पहले ही ये कह दिया गया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उनका अलायंस जीतता है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो वहां कोई सवाल ही नहीं रह गया कि अब लीडर चुना जाए, अगर पार्टी को बहुमत मिल गया है तो उनके जो लीडर हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी बन गए। हमारे यहां फिर जो दूसरी प्रणाली है कि अगर किसी को ये नहीं बताया गया है कि कौन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे राज्यों में आप देखिए चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में हुए, तो ये नहीं पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहा गया भाई कि ठीक है, अगर हमें बहुमत मिलेगा तो जो हमारे चुनकर आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, जो एमपी और एमएलए होंगे, वो अपना दल के नेता का निर्वाचन करेंगे और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही हुआ मध्य प्रदेश चुनाव में और राजस्थान वगैरह के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राइट। वहां थोड़ी सी प्रणाली इसको विस्तृत कर दी गई है, वहां यह किया गया है। अब आप देखिए कि 1,60,000 लोगों ने वोट दिए, टोटल वोट पड़े कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो ये वोट देने वाले लोग कौन है, ये वोट देने वाले लोग कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के ही मेंबर, इसमें आम जनता नहीं है, यानी कि जिन लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी को जिताया है, जो मेंबर है बकायदे, उन लोगों ने वोट दिया और उसमें से कुछ लोगों को यह अधिकार दे दिया गया है, तो वह भी एक प्रकार से अपने संसदीय दल के नेता का ही चुनाव कर रहे हैं। लेकिन नेता चुनने का अधिकार केवल चुने गए नेताओं को नहीं है, बल्कि पार्टी के सदस्यों को भी दे दिया गया है। वहां थोड़ा सा यह फर्क है, अदरवाइज बिल्कुल भारतीय परंपरा पैटर्न कह लीजिए और ब्रिटेन का पैटर्न लगभग लगभग एक जैसा ही है, ठीक है मित्रों। तो अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, वह है सूचना के अधिकार को लेकर। कल मैं आपसे प्रश्नों के पैटर्न के बारे में बात कर रहा था कि हमें जिस टॉपिक को हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं, मालूम होना चाहिए कि उस पर किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसी पैटर्न पर फिर हम उस प्रश्न पर विचार करते हैं, उस टॉपिक पर विचार करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये बेकार का काम लगे कि हम तो खुद ही पढ़ लिए होते, लेकिन मुझे बेकार का काम मित्र नहीं लग रहा है, तो मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों से अवगत कराऊं। एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? अब आप देखिए कि इसका कोई सीधा संबंध आपको सूचना के अधिकार से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह प्रश्न क्या है कि लोक सेवाओं में कड़े सुधार की आवश्यकता है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? अगर आपको महसूस होता है तो उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी तक जो सूचना के अधिकार को लेकर की आलोचना की जाती थी वो ये कि चूंकि लोग सूचना के अधिकार कुछ भी बातें पूछने लगते हैं, तो अब जो हमारे अधिकारी हैं वो निर्णय लेने में थोड़ा सा परहेज करने लगे हैं कि पता लगा कि हमने बता दिया है और फिर उसको लेकर के बहस हो गई तो निर्णय ही मत लो। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में ये बात बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब अभी की सरकार में देखिए नहीं हो रहा है। भाई आप निर्णय लीजिए, सही लीजिए, उसकी प्रक्रिया बनी हुई है और कोई पूछ रहा है तो बता दीजिए, उसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। तो इस तरीके से बकायदे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि एक प्रश्न और मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, नागरिक चार्टर, इस अभी मेंस के थर्ड पेपर में पूछे गए हैं, नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं, परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। कल मैंने आपसे नागरिक चार्टरता के बारे में बात की थी। देखिए, जो सिविल सर्विस में जो आप आंसर लिखते हैं, उस आंसर का वजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने उत्तर में कितने सारे दूसरी चीजों को लिंक किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ठूंसा है। वो चीजें बहुत ही स्वाभाविक तौर पर आई हैं। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो यहां भी आपको एक बात दिखाई देगी, एक तथ्य आपको दिखाई देगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अगला पढ़ करके सुना रहा हूं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC वही मानव अधिकार आयोग की भूमिका का आकलन कीजिए। यानी कि ये प्रश्न है, देखिए, मानव अधिकार आयोग पर, सूचना अधिकार पर नहीं है, लेकिन वो कह क्या रहा है, मतलब ऐसे उपाय बताइए जिससे कि मानव अधिकार आयोग अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सके, दायित्वों को निभा सके। क्या आपको नहीं लगता कि इसी पैटर्न को हम सूचना के अधिकार पर लागू कर सकते हैं? और जब हम इस पैटर्न को लागू करेंगे तो अभी जो संशोधन किए गए हैं उनका हम मूल्यांकन करें कि फिर इस तरीके के दायित्वों को निभाने में यह कितना सहायक सिद्ध होगा, या कि पता लगा कि यह उसके विरोध में हो रहा है, तो बड़े आराम से हम इसके आधार पर, ये जो मैंने आपको तीन प्रश्न बताए हैं, इन तीन प्रश्नों के आधार पर अपने लिए सूचना के अधिकार के प्रश्न के पैटर्न की तलाश कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इस साल का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को किस एंगल से मुझे विशेष रूप से तैयार करना है। मैंने यहां शब्द प्रयोग किया है, विशेष रूप से तैयार करना है। सामान्य रूप से तो आप करते ही हैं। तो अब आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिलेंगे। ध्यान होगा आपको, कल मैंने हिंदू का आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था जो सूचना के अधिकार पर ही था, और वो उसमें अरुणा राय और एक उनके साथ और किसी ने मिलकर के लिखा था। अरुणा राय वो महिला हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार के लिए जबरदस्त रूप से एक लंबा आंदोलन छेड़ा, और वो खुद आईएएस ऑफिसर्स थी, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अरुणा राय, उनका आर्टिकल है और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मैं उसका हिंदी वर्जन आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, तो वहां से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको दूसरे आर्टिकल से मिल जाएंगे, कुछ एडिटोरियल कमेंट से मिल जाएंगे। इस तरह से आपके पास खूबसूरत 5, 7, 8, 9, 10 पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे। बात खत्म हो गई, आपका यह टॉपिक तैयार हो गया। तो मित्रों, सिविल सर्विस के लिए आपको कहीं न कहीं इस तरीके से विशिष्ट रूप में अपनी तैयारी करनी ही चाहिए। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। कुछ उत्तर मैं दे रहा हूं जो ईमेल से पूछे गए हैं। एक ने पूछा कि हम अपने उत्तर में तथ्यों का कितने प्रतिशत मिश्रण करें। देखिए, उत्तर लिखने में प्रतिशत का कुछ नहीं होता है ना, ये कोई रेसिपी नहीं है सब्जी बनाने की कि इसमें इतना नमक, इतना मिर्चा और इतना मसाला डाला जाना चाहिए। ये उत्तर की डिमांड जो होती है, जो मतलब आप कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट जो होती है, या क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, वो अपने आप में हमें बता देती है कि कितना क्या, किस कितना मिश्रण आप करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के फार्मूले से अपने दिमाग को हटाइए। उत्तर लिखना जो है मैकेनिकल नहीं है, है ना, ये आर्ट है। कुछ लोगों ने पूछा है कि जब हम हिंदी माध्यम में लिखते हैं तो अंग्रेजी शब्दों का कितना प्रयोग करें। कोशिश कीजिए कि न करें, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की जगह प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे, राष्ट्रपति की जगह प्रेसिडेंट लिखेंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो बहुत बोलचाल में आ गए हैं, जिनके हिंदी शब्द उस तरह से अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आप बकायदे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डिजिटलीकरण तो आप कर दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर आप उसका उपयोग कर लीजिए, है ना। लेकिन जो सामान्य शब्द हैं जो हिंदी में, कोशिश कीजिए कि उनमें हिंदी के ही शब्द रखें। तो दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, राकेश कुमार राजभर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, निशा निमोरिया, प्रियंका तिवारी और अभिषेक रमन झा जमुई से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।